ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए युवाओं का विदेश मोह एक बड़ी चुनौती बन गई है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के पंजीकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार और सेवा केन्द्र संचालन की स्वीकृति पर सरकार ने लगाई रोक। और इसराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध विराम की सहमति हुई क्रियान्वित, गजा में मानवीय सहायता भेजा जाना हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि नेपाल की उच्च शिक्षा चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। आज धुली खेल में आयोजित उच्च शिक्षा मानकों की एकरूपता और अंतर्राष्ट्रीयकरण के विषय पर उपकुलपतियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने स्वीकार किया कि शिक्षा क्षेत्र में राज्य का निवेश पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए युवाओं का विदेश मोह एक बड़ी चुनौती बन गई है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए भौतिक एवं डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति और शिक्षा के बाद नौकरी के अवसरों के निर्माण के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि उच्च शिक्षा को प्रत्यक्ष दलीय राजनीति का खेल मैदान न बनने देने के लिए देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की पहल, सहकार्य और समान सोच की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विश्वविद्यालयों के पदेन कुलपति की प्रणाली अव्यावहारिक है, लेकिन विकल्पों की तलाश करते समय विश्वविद्यालय के नेतृत्व चयन से लेकर प्राज्ञिक कार्यक्रम संचालन तक किसी निहित स्वार्थ समूह के दबाव में न आने जैसी बातों पर भी उतना ही ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड के साथ नेपाल दौरे पर रहे कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुखैरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके बीच दो देशों के संबंध, आपसी हित, लगायत, विविध विषयों पर विचार विमर्श हुआ था। साथ ही उनके बीच निवेश और श्रम सहयोग के विषय में भी विचार साझा हुए। इसी तरह परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद ने कतर के विदेश राज्य मंत्री मुखैरी से हमास के नियंत्रण में रहे नेपाली विपिन जोशी की रिहाई के लिए पहल करने का आग्रह किया। ये जानकारी मंत्री साउद के प्रमुख स्वकीय सचिव दीपक राज जोशी ने दी। सरकार ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के पंजीकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार और सेवा केन्द्र संचालन की स्वीकृति पर रोक लगा दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका और नगरपालिकाओं को कार्यक्षेत्र बनाकर बचत तथा ऋण का मुख्य कारोबार करने के हिसाब से संघ, प्रदेश और स्थानीय तहों से किसी भी प्रकृति की सहकारी संस्था पंजीकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार और सेवा केन्द्र की स्वीकृति पर रोक लगाने का हुए निर्णय का हवाला देते हुए भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय ने मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक ही काम करने का अनुरोध किया है। इस बात के जिक्र के साथ कि समूचे वित्तीय क्षेत्र पर असर पड़ सकने का जोखिम बढ़ गया है, मंत्रालय के प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्ट ने बताया कि मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार ऐसे कामों पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला कानून एवं विकास मंच ने जाजरकोट भूकंप पीड़ित प्रसूता महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने का आग्रह किया है। आज आयोग की ओर से अध्यक्ष कमला फराजुली और मंच के सचिवालय की ओर से नवीन कुमार श्रेष्ठ ने एक बयान के जरिए गृह मंत्रालय समेत संबंधित निकायों का ध्यान आकर्षित करते हुए ऐसा आग्रह किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती ने कहा है कि कपिल वस्तु के तिलोरा कोट को राष्ट्रीय गौरव वाली परियोजना में शामिल करने और विश्व संपदा सूची में सूचीबद्ध करने के लिए अंतिम चरण के मनोनयन दस्तावेज पेश करने की तैयारी की जा रही है। आज तिलोरा कोट के निरीक्षण के दौरान मंत्री किराती ने कहा कि सरकार राजा शुद्धोधन के राजदरबार, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के 29 वर्ष बिताए थे, प्राचीन तिलोरा कोट को विश्व संपदा सूची में शामिल करने की पहल की जा रही है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि वर्तमान शासन व्यवस्था को मजबूत करते हुए जनता की समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत है। आज नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची के प्रथम जिला सम्मेलन में महामंत्री थापा ने कहा कि सरकार को संघीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हुए आर्थिक समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री विश्वप्रकाश शर्मा ने कहा कि मौजूदा गणतांत्रिक व्यवस्था का विरोध करने का ये उचित समय नहीं है। आज मोरंग की कटहरी में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में महामंत्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में यही व्यवस्था उत्कृष्ट है और इस व्यवस्था का विकल्प ढूंढने की जरूरत अभी नहीं है। चितवन राष्ट्रीय निकुंज के मध्यवर्ती क्षेत्र में बाघ के हमले से राप्ती नगरपालिका वार्ड नंबर 1 दुवी चौर के 43 वर्षीय हरि पौडेल की मौत हो गई। चितवन राष्ट्रीय निकुंज के सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारी के मुताबिक आज सुबह मकवानपुर की मनहरी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 लोथर में पौडेल घास काटने के लिए गए थे, वहीं उन पर अचानक बाघ ने हमला कर उनकी जान ले ली। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम के समझौते को आज से लागू किया गया है। हमास ने 13 इसराइली बंधकों को राहत कार्य में लगी रेडक्रॉस के हवाले कर दिया है। युद्ध विराम के बाद से मानवीय सहायता गजा में मानवीय सहायता भेजा जाना भी शुरू हो चुका है। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच 4 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम आज सुबह से लागू हो गया है। इस युद्ध में उत्तरी गजा के हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर दक्षिण की ओर जाना पड़ा था। इसराइली मीडिया में आ रहे खबरों के हवाले से बीबीसी ने बताया कि रिहा किए गए इसराइली बंधकों को मिस्र से सटी गजा की सीमा की तरफ ले जाया जा रहा है। मिस्र से इन सभी को इसराइली सेना अपने हेलीकॉप्टरों में ले जाएगी। इससे पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमास ने थाईलैंड के 12 नागरिकों को छोड़ दिया है। इन्हें गजा में बंधक बनाकर रखा गया था, लेकिन ये 12 लोग युद्ध विराम की शर्तों का हिस्सा नहीं हैं। युद्ध विराम की शर्तों का पालन करते हुए हमास ने 13 इसराइली नागरिकों को भी छोड़ दिया है। थाई बंधकों के बारे में थाईलैंड दूतावास के अधिकारियों का कहना है कि वो बंधकों को लाने जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बंधकों को कहां रखा गया है। चीन ने आज घोषणा की कि वो 5 यूरोपीय देशों और मलेशिया के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा, क्योंकि वो अधिक लोगों को व्यापार और पर्यटन के लिए यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। 1 दिसंबर से फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और मलेशिया के नागरिकों को बिना वीजा के 15 दिनों तक चीन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षण कार्यक्रम 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग के एक दैनिक ब्रीफिंग में कहा, इसका उद्देश्य चीनी और विदेशी कर्मियों के आदान प्रदान के उच्च गुणवत्ता वाले विकास और बाहरी दुनिया के लिए उच्च स्तरीय उद्घाटन की सुविधा प्रदान करना है। चीन के सख्त महामारी उपायों के प्रयास ने कई लोगों को लगभग 3 वर्षों तक यात्रा करने से हतोत्साहित किया। इस साल की शुरुआत में प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अभी भी महामारी से पहले के स्तर पर वापस नहीं आई है। चीन ने पहले ब्रुनेई, जापान और सिंगापुर के नागरिकों को बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति दी थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के बाद इसे निलंबित कर दिया गया था। इसने जुलाई में ब्रुनेई और सिंगापुर के लिए वीजा मुक्त प्रवेश फिर से शुरू किया, लेकिन जापान के लिए ऐसा नहीं किया। इमिग्रेशन आंकड़ों के अनुसार वर्ष के पहले 6 महीनों में चीन में विदेशियों द्वारा 8.4 मिलियन प्रवेश और निकास दर्ज किए गए। इसकी तुलना पूरे सन 2019 में 970 मिलियन से की जाती है, जो महामारी से पहले का आखिरी साल था। सरकार सुस्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद के लिए विदेशी निवेश की मांग कर रही है और कुछ व्यवसायी व्यापार मेलों और बैठकों के लिए आ रहे हैं, जिनमें टेस्ला के एलन मस्क और एप्पल के टिम कुक शामिल हैं। महामारी से पहले की तुलना में विदेशी पर्यटक अभी भी चीन में दुर्लभ हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए युवाओं का विदेश मोह एक बड़ी चुनौती बन गई है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के पंजीकरण, कार्यक्षेत्र विस्तार और सेवा केंद्र संचालन की स्वीकृति पर सरकार ने लगाई रोक और इसराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध विराम की सहमति हुई क्रियान्वित, गजा में मानवीय सहायता भेजा जाना हुआ शुरू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।